हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमेशा मज़लूम की दुआ से डरो, इसलिए कि मज़लूम की बदुआ से, मज़लूम की बदुआ से डरो, इसलिए कि मज़लूम की बदुआ में और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं। लेकिन नाज़रीन, आजकल कौन इस बात को हम किस तरह मानते हैं और इस बात को कितना अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मज़लूम पे जुल्म होता जा रहा है, ज़ालिम और ताकतवर होता जा रहा है, इसलिए कि हम कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, शायद इस डर से कि क्यों हम किसी के लिए आवाज़ उठाएं, क्यों हम किसी के लिए अपने आप को ख़राब करें। लेकिन इस बात पे आज ज़रा बैठ के गौर और फिक्र करते हैं कि कितना हम मज़लूमों का साथ दे रहे हैं और कितना हम ज़ालिम को और ताकतवर कर रहे हैं। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम और बहुत बहुत सुबह खैर अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में हम अर्ज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सी एनर्जी से भरी हुई सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। ठंडी ठंडी मौसम में हम आपके लिए गर्मा गर्म प्रोग्राम लेके आए हैं।
जी करता हूँ आपकी खिदमत में, अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आपको जो है थोड़ी सी ठंड लगी हुई है,
बिल्कुल
बहुत बहुत ठंड है जी, तकरीबन जो है -1, -2, -3 तक जो है दर्जा हरारत पहुँच चुका है तेहरान में,
और जबरदस्त बर्फबारी हो रही है,
जबरदस्त किस्म की बर्फबारी हो रही है। ये तो मौसम की सूरत हाल थी। और सिर्फ जो एक चीज है वो ये है कि जो लोग सो रहे हैं तेहरान में बैठे हुए और हमारा प्रोग्राम नहीं देख रहे, मैं उनको कहूंगा कि वो जागें, एक तो खिड़की खोलें और थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा और बाहर का जो खूबसूरत सा नज़ारा है उसको, उससे लुत्फानंदोज हों, क्योंकि उससे लुत्फानंदोज नहीं होंगे तो ये नज़ारे आजकल जो है कम मिलते हैं, क्योंकि इतनी आलूदगी ज्यादा हो गई है कि बर्फ जो है वो कम, बहुत कम है। बहरहाल आपको ये बताता चलूं,
हफ्ते का मौजू
भी बताते चलेंगे हम लोग। हफ्ते का मौजू जो है खुदगर्जी चल रही है, ठीक है, लेकिन उससे भी अहम एक चीज बताता चलूं, इजाजत दें आप तो।
जी
इजाजत मिल गई है मुझे। और उससे जो अहम चीज है वो ये है कि आज 14 बहमन है,
बिल्कुल
ठीक है
जी।
और 12 बहमन ईरानी जो तारीख है, 12 बहमन वो तारीख है जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह वापस ईरान में तशरीफ लाए और इंकलाबी तहरीक जो है उसको शुरू कर दिया गया, यानी पूरे उससे ताकत से शुरू कर दिया।
और जो ईरानी कौम ने जो जद्दोजहद की थी इस्लामी इंकलाब के लिए, यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि वो उनको अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिख रहा था।
बिल्कुल सही। और ये 12 बहमन से 22 बहमन के जो दिन हैं,
10 दिन हैं, जो पूरे
10 दिन हैं, उनको क्या कहा जाता है? दहे फज कहा जाता है। और दहे फज इस तरह मैं कहूंगा कि फज्र के 10 दिन अगर हम इस तरह बोले तो वो जो है ये कहलाते हैं। और ये इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि इन 10 दिनों में ईरानी कौम ने पूरा अपना जोर लगाया कि वो इस्लामी इंकलाब को एक हकीकत में तब्दील कर सके और 22 बहमन को जाकर, बिल्कुल, और 22 बहमन को जाकर जो है वो ख्वाब जो है
वो पूरा हुआ,
पूरा हुआ, बिल्कुल। बहरहाल तो हम लोग ये वो 10 दिन गुजार रहे हैं और ये वो 10 दिन है जो रुबाब ने, जिसके बारे में बात की है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और मजलूम का साथ देने वाले दिन है,
बिल्कुल
ठीक है ना।
और हम देखते हैं ईरानी तारीख में यही बिल्कुल हुआ कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठी और आप देख सकते हैं किस खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने आप को या अपनी उस जालिम जो उन पे जो
थे, बिल्कुल बिल्कुल सही,
उनके खिलाफ आवाज उठाई और तख्ता ही पलट दिया, बिल्कुल।
और एक जो चीज रुबाब आपने बात की, दूसरा जो मजलूम है उसका साथ देना जरूरी है, वो बिल्कुल इस तरह की मिसाल बन जाती है कि आपके हमसाया जो है उसका घर जल रहा है और आप बैठे रहे, वो यकीन माने कि वो 5-10 मिनट के बाद
पहुंचेंगे,
बिल्कुल। तो ये इस चीज का ख्याल रखना चाहिए और ये बहुत ही अहम बात रुबाब ने सुबह सवेरे की है कि जालिम का साथ इस वजह से ना दें, क्योंकि आप कहेंगे जी मुझे क्या नुकसान है इस चीज का, मैं तो जी चल रही है बात ठीक है, उसके पर जुल्म हो रहा है, मेरे पर जुल्म तो नहीं हो रहा। तो बहरहाल रुबाब मुझे कह रही है कि जी ज्यादा आपने बोल लिया
कुछ ज्यादा ही जुल्म और मजलूम के खिलाफ हम बारे में हमने बात की। नाज़रीन, अब ये मजलूम और जालिम की थोड़े इससे निकल के बाहर आपको सैर कराते हैं ईरान के एक सूबे की। जी हाँ, हम किरमान की सैर करने जा रहे हैं, एक तारीखी जगह है, आइए साथ में चलते हैं किरमान। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। और नाज़रीन, आपने किरमान की सैर की, ईरान का एक बहुत खूबसूरत सूबा जहाँ बहुत सी खूबसूरत तारीखी इमारतें हैं। अगर आपको तारीख में थोड़ी भी दिलचस्पी और अगर आप टूरिस्ट यहाँ पर ईरान में आना होता है तो आप वहाँ ज़रूर जाएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी राय या एक नज़र मैं आपको बोल सकती हूँ, हो सके। खैर नाज़रीन, हमारे गुफ्तगू के सेगमेंट का जो है वो वक्त शुरू होने वाला है और हमें चलना है खुर्रम के पास। अब देखते हैं हमारे आज के मेहमान कौन है। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया रुबाब। और हमारे आज के, माफ कीजिएगा, हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर फहीम मकबूल साहब, हमारे साथ इंशाल्लाह स्टूडियो में हैं। और हमने जैसे कि आपको वो पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हमारा जो मौजू चलेगा वो चलेगा पेन किलर्स का इस्तेमाल, दर्द से बचने की दवाइयाँ जो खाई जाती हैं, वो क्यों खाई जाती हैं, खाना उनका सही है नहीं सही, ये सारे सवाल जो है हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो फील्ड है वो फार्माकोलॉजी है और अभी जो है टेक्सोलॉजी में PhD कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो चलते हैं, मुलाकात करते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर फहीम मकबूल साहब से, और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत
वालेकुम
में,
अस्सलाम,
और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला।
शुक्रिया
डॉक्टर साहब, बड़ा अहम मौजू हम लेके आए हैं, और OTC दवाई है, दवाइयाँ हैं, मसलन आप जाते हैं, अलबत्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो है वो जो है हर किस्म की दवाई जो है OTC है, आपको जो है आप जाएं और वहाँ पर मिल जाती है, लेकिन वो दवाइयाँ जो आम तौर पे जो है दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगा कि आया पेन किलर के नुकसान हैं भी सही, या हम लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि जी नुकसान है नुकसान है नुकसान है।
इस पेन किलर के नुकसान को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं ये बताऊँ कि पेन क्या है।
ठीक है, ज़रूर डॉक्टर
तो
साहब।
पेन चूँकि एक आम जबान में दर्द की कैफियत, शिद्दत, किसी भी जिस्म में के हिस्से में दबाव आपको महसूस करना पेन
सही,
है, जिसकी नर्वस सिस्टम से एक जो है इन्फ्लेमेटरी न्यूरॉन्स जो है वो मीडिएटर सीक्रेट करते हैं,
ठीक है
प्रोस्टाग्लैंडिंस,
ठीक है
जिसकी वजह से हमें जिस्म के किसी भी हिस्से में दबाव महसूस होता है।
ठीक है,
तो इसकी ये मेडिकल रीज़न है। अगर हम थोड़ा सा इस दूसरे पहलू पे देखें कि पेन आया कि पेन हमारे लिए जहमत है या नेमत है, तो एक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पेन एक हमारे लिए नेमत भी है।
ठीक है,
वो किस तरीके से देखें, अगर आपको कोई बीमारी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फीवर है, बुखार है,
बुखार,
तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे बुखार है?
सही है,
तो यकीनन आपके जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होगा, हेडेक होगी, बॉडी पेन होगी, तो
जी
जिससे आपको एक इंडिकेशन मिलेगी कि आपको इसको ट्रीट करना है, आपके
ठीक है,
जिस्म में
सही करना है,
इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सिक्रीट हो रहे हैं,
गड़बड़ है बदन में,
गड़बड़ है कोई,
सही, ठीक है।
तो ये एक अगर थोड़े लंबे तक देखा जाए तो एक नेमत है, अगर इसको ट्रीट कर लिया जाए तो ये जहमत ना बन जाए इससे पहले
सही
कि
है।
ट्रीट कर लेना बेहतर है। अब पेन किलर्स के नुकसान क्या हैं, ये वाकई इसके नुकसान हैं या नहीं, इसके अब इसको देखा जाए तो पेन किलर्स की जो ज्यादती है वो नुकसान की तरफ ले जाती है।
ठीक है,
इसके फवायद ज़रूर हैं, मगर उसी सूरत में जब आपको अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम योर डॉक्टर, अगर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक आपको दवाई ले रहे हैं तो आपको यकीनन फ़ायदा पहुंच रहा है, मगर अब हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे पाकिस्तान या हिंदुस्तान इस तरह की कंट्रीज जो हैं, हमारे जो है तालीम कम है, लोग जो है खुद डॉक्टर बनना पसंद करते हैं,
ठीक है,
इसकी बजाय कि वो किसी फिजिशियन से रजू करें और किसी अच्छी पेन किलर की तरफ जाएं, तो वो खुद पैरासीटामोल, प्रूफीन, इस तरह की टैबलेट्स जो रोज़मर्रा की हैं हमारे घर में, हर किसी घर में मौजूद होती हैं,
सही है, ठीक है,
किसी भी दर्द की सूरत में हम पेनाडोल या पैरासीटामोल, आइबुप्रोफीन, प्रूफीन वगैरह ले सकते हैं,
डिस्प्रीन,
जी इसके, हाँ जी। तो अब इसकी मेडिकल जो नुकसान बहुत ज़्यादा हैं,
सही,
फॉर एग्ज़ाम्पल जो पैरासीटामोल है, अगर इस आजकल जो रिसर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो पैरासीटामोल है वो ही जो एक बड़ी वजह है हेपेटाइटिस सी की।
अच्छा,
हेपेटाइटिस सी की, वो क्योंकि पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिक है,
ठीक है,
तो इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, तो
ये डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ा सा अगर ये हिपैटो टॉक्सिसिटी जो आपने बताया, ये थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन के लिए इस बात को खोलने, क्योंकि ये कहते हैं कि मसलन जो हमारा लिवर है वो किचन होता है हमारे पूरे बदन का, तो ये जो टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है उसका, उसको थोड़ा सा
बता,
जी जरूर, शुक्रिया।
जो भी दवाई आप ओरली यानी कि मुंह के जरिए लेंगे,
जी जी बिल्कुल,
वो आपके मैदे में जाएगी और मैदे से नालियों से, खून की नालियों से अब्सॉर्ब होती हुई जिगर में जाती है,
ठीक है,
जब वो जिगर, हर मेडिसिन इसी तरीके से अब्सॉर्ब होती है,
ठीक
और
है,
कुछ मेडिसिन मैदे में ही अब्सॉर्ब हो जाती हैं, और 90% मेडिसिन लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है,
सही, यानी जिगर में जाएगी उसके बाद फिर उसका
वो टूटती है वहां से, तो ये वहां पे इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो इसके जो ज़रात अज्जा हैं जो टूटते हैं, वो लिवर को मुतासिर करते हैं,
ठीक है।
इस पे ये तहकीक है कि अगर एक जो हम आज पेनाडोल लेते हैं वो 500 मिलीग्राम की होती है मोस्टली, अगर एक तहकीक के मुताबिक अगर 10 मिलीग्राम अगर टोटल ले ली जाए, यानी कि 40 पेनाडोल एक दिन में ले ली जाए, तो एक इंसान की मौत वाकई हो जाएगी।
یعنی ایک پیناڈول کا جو پتا ہے پورا
جی
اس کے اندر 10 پیناڈول ہیں ہماری, وہ اگر وہ 10 کی
40 40 اگر ٹیبلٹس ایک دن میں لے لی جائیں تو وہ موت کی طرف لے جائے گی آپ,
اور وہ موت جو ہے وہ
ہیپاٹوٹوکسی کی وجہ سے,
ہاں جگر کے فیل ہونے کی وجہ سے,
جبکہ ہمارے تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک بندہ 40 ہی لے جائے, مگر وہ سلولی ایک دو دن لیتا رہتا ہے, وہ سلولی وہ اس کو متاثر کرتی ہے.
صحیح ہے,
تو بہتر ہے کہ اسے اوائڈ کیا جائے.
ٹھیک ہے,
تو جس طرح بروفن ہے اس کا دل پہ بہت برے اثرات ہیں.
اچھا
جی, تو یہ اس کی ایک کلاس ہے ہمارے NSAID, نان سٹیرائڈل اینٹی انفلامیٹری ڈرگس. NSAID اس میں یہ بروفن فال کر رہی ہے اس کیٹیگری میں. یہ اس کیٹیگری کا فنکشن یہ ہے کہ سائیکلوکسیجنیز ہارمون ہے انسان کی باڈی میں انزائم, وہ سائیکلوکسیجنیز پروسٹاگلینڈنز کو بننے میں مدد دیتا ہے. جب سائیکلوکسینیز کو انہبٹ کرتے ہیں تو NSAID اس کیٹیگری کو انہبٹ کر رہے ہیں, مگر اس کا جی آئی ٹی نظام انہضام میدے پہ بہت برا اثر ہے.
اچھا,
خون وہاں پہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے میدے میں زیادہ لینے سے.
ٹھیک,
تو وہاں پہ زخم ہو جاتے ہیں, السر کی طرف لے جاتا ہے یہ.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, تو NSAID کا استعمال ہمیں السر کی طرف لے جائے گا.
اچھا, یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب یہاں پر بتایا ہے کہ بروفن جو ہے وہ NSAID میں آ جاتی ہے. NSAID وہ دوائیاں جو ہمیں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اگر سادے لفظوں میں بولیں کہ جو بے حس کر دیتی ہیں بدن کو اور جو سلا دیتی ہیں, اس طرح اگر کہیں تو بہتر رہے گا.
بالکل جی بالکل, پین پین کو ختم کرنے کے لیے ہم NSAID لے رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم پین کو ختم کر دیتے ہیں مگر وہ بیماری جو پیچھے اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے وہ چل رہی ہے.
ٹھیک ہے,
سمٹم کو ٹریٹ کر دیتے ہیں, سمٹومیٹک یعنی کہ نشانی علامات کو ختم کرنے کے لیے پین کو ختم کر دیتے ہیں, مگر اس کی بجائے کسی مولا سے رجوع نہیں کرتے.
ٹھیک ہے,
لیب ڈائگنوسس لیبارٹری میں ٹیسٹ کی طرف نہیں جاتے.
نہیں جاتے. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ نے بتایا ایک کہ آپ نے بتایا کہ پین کلر مختلف قسم کی ہیں, اس میں ایک جو ہمارا نقصان ہے وہ جگر پہ ہو رہا ہے اور دوسرا نقصان جو ہے وہ میدے پہ ہو رہا ہے, بلیڈنگ کا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کو ہم انشاءاللہ آگے چلائیں گے, اور ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلوں کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فہیم مقبول ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, پین کلرس کے بارے میں NSAID کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے, کیا نقصانات ہیں کیا فوائد ہیں, کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں فیس بک پہ کال کر کے, ہمارا نمبر ہے 0098 ایران کا کوڈ ہے, اس کے بعد 21 تہران کا کوڈ ہے, اور 2265-1803 جو ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے, آپ کسی بھی اس طریقے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی رباب
جی بہت شکریہ خرم, اور یہاں میں سید قرار ہاشمی صاحب کا بھی جو ایک انہوں نے میسج ہمارے لیے بھیجا ہے, پڑھتی چلو. انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی جو ایران میں اسلامی انقلاب ہوا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے امن کا پیغام لایا ہے. بالکل ٹھیک, بہت ہی خوبصورت بات, بہت شکریہ اپنی جو رائے آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ. جس طرح ہمارے ایک خوبصورت ناظرین نے ہمارے ساتھ اپنی رائے شیئر کی, آپ بھی اس طرح ہمارے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں اس وقفے میں. جی ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام صبح زندگی, اور امید کرتے ہیں آپ کا ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا. ڈاکٹر فہیم مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جس طرح خرم نے بھی بتایا کہ بیجا دوائیوں کا استعمال کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ہم اس بارے میں بات کریں. کوئی بھی آپ کے سوالات ہو ہمیں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں خرم کے پاس. جی خرم
شکریہ, اور بیجا خاص طور پہ جو پین کلرز ہیں ان کے بارے میں ہماری خاص جو ہے اگر میں اس کو جو رہا
وضاحت کر دوں,
دائرے کو جو ہے چھوٹا کر دوں. جی بالکل وضاحت کر دوں اس کی, اور جیسا کہ میں نے بتایا ڈاکٹر فہیم مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے گفتگو کو آگے چلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پیراسیٹامول کی بات کی, آپ نے بروفین کی بات کی, اور کوئی دوائی ایسی ہے جس کے بارے میں آپ بات کریں, چونکہ یہ وہ دوائیاں دو دوائیوں کے نام ہیں جو میرے خیال میں پوری دنیا میں شاید جو ہے وہ بہت زیادہ شاید مختلف ناموں سے
بالکل
لیکن استعمال کی جا رہی ہیں.
ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں ڈینگی کافی
پھیلا ہوا ہے, ڈینگی وائرس جو جی,
تو اس کی جو علامات ہیں پہلے تو باڈی میں پین ہے اور نظر کا ویک ہو جانا اور کھانسی وغیرہ, یہ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے موسٹلی لوگ پین کلرز لیتے ہیں. اوکے,
صحیح.
تو پین کلرز فار ایگزامپل اگر ڈسپرین لے رہے ہیں نا تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ ڈینگی میں پلیٹلیٹس پہلے ہی کم ہو رہے ہیں.
پلیٹلیٹس ڈاکٹر صاحب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے خون کی کلاٹنگ میں ہمیں مدد دیتی ہیں.
بالکل بالکل,
خون اگر کہیں زخم لگ گیا تو خون نکل رہا ہے تو وہ خون کا جمنا جو ہے وہ پلیٹلیٹس.
بالکل, اور قوت مدافعت ہے جو اس کو بھی स्ट्रॉन्ग करते हैं
डिफाई सिस्टम हमारे बदन का जो है, ठीक सही।
जब प्लेटलेट्स ऑलरेडी उसकी कंसंट्रेशन जो है बॉडी में लेवल 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान होना चाहिए तो वो 40-50 हजार के करीब आ जाते हैं
डेंगू, इतने कम हो जाते
हैं
डेंगू वायरस
जी बिल्कुल,
ठीक है।
तो अभी इंसान को अगर पेशेंट है उसको नहीं पता है कि उसे डेंगू है या नहीं, वो तब पता चलेगा कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस होगा,
ठीक है। तो टेस्ट आप करवाएं
जी बिल्कुल, अगर टेस्ट नहीं हो रहा तो मजीद मोस्टली केसेस ऐसे जो हमारे मोर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ा डेंगू में, क्यों डेथ ज्यादा हुई, कैजुअलिटीज, उसी वजह यही थी कि डिस्पिरिन का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, जबकि डिस्पिरिन मौत की तरफ ले जाएगी, एंटी प्लेटलेट है।
यानी डेंगू की बीमारी में मुबतला शख्स ने डिस्पिरिन का इस्तेमाल किया और वो ज्यादा उसको, ये कैसे डॉक्टर साहब?
डिस्प्रीन का मेन फंक्शन है जो एंटी प्लेटलेट है, प्लेटलेट लोअरिंग है, खून को पतला करता है
अच्छा।
और प्लेटलेट की मकदार को कम करता है,
सही
ठीक है। तो जिसकी वजह से हमेशा डिस्प्रीन को डेंगू में रिकमेंड नहीं करते,
नहीं किया जाता,
पैनाडोल ही इसका ट्रीटमेंट है।
हाँ जी, लेकिन पैनाडोल ये काम नहीं करेगी
जी, पैनाडोल इसमें काम करेगी।
हाँ, यानी पैनाडोल प्लेटलेट्स को कम नहीं करेगी हमारे पास,
नहीं वो कम नहीं करेगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।
डॉक्टर साहब डिस्प्रीन तो जो है बड़े बहुत ज्यादा खाई जाती है पाकिस्तान हिंदुस्तान में, और बिल्कुल तो ये प्लेटलेट्स को कम करती है तो नुकसानदेह नहीं है फिर?
बिल्कुल ये नुकसानदेह है, मगर डिजीज टू डिजीज यानी कि वेरी करता है ना, हर डिजीज टू डिजीज वेरी करेगा,
ठीक है।
अब एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं जो हम फॉलो करते हैं BNF,
ठीक,
उसके मुताबिक जो 40 साल की उम्र है उसके बाद हर इंसान को रोजाना एक डिस्प्रीन लेना चाहिए,
अच्छा
एस्प्रीन,
ठीक,
क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि खून गाढ़ा शुरू हो जाता है,
ठीक है, गाढ़ा
तो खून को पता रखने के लिए जो इंसान में दिल की बीमारियां कम हो तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर डेंगू की सूरत में ये मौत की तरफ ले जाएगी।
डेंगू या और कोई अगर ऐसी बीमारी जिसमें प्लेटलेट्स जो है हमारे पास
कम हो रहे हैं,
ठीक।
तो मगर रिकमेंडेशन ये है, स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद डिस्प्रीन हर इंसान को रोजाना एक लेनी चाहिए,
लेनी है, ठीक। अच्छा, ये तो एक आपने फायदा भी बना दिया, बता दिया डॉक्टर। तो है डॉक्टर साहब और कोई फायदे भी हैं हमारे पास इनके जो पेन किलर्स वगैरह जो एनसेड हम इस्तेमाल करते हैं?
एक एनसेड के अलावा एक और हमारी ये है, इसकी कैटेगरी है जो पेन किलर की, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स,
ठीक है।
ओपियोइड्स ये वो कैटेगरी है जिसमें सब नार्कोटिक्स फॉल कर रही है, मगर वो बहुत अच्छी पेन किलर है,
ठीक है,
मगर उसके नुकसान हैं कि
नार्कोटिक्स मतलब आपका वो जो नशा देने वाली
जी बिल्कुल वो रिलैक्सेंट हैं और पेन को कम करते हैं,
ठीक है।
वो कैटेगरी में मोस्टली जो हमारे खांसी वाले सिरप है ना, कफ सिरप, उसमें कोडीन फॉस्फेट ऐड होती है, कोडीन है जो पेन किलर है,
ठीक जी जी,
तो वो कम लो पोटेंसी है उसमें,
ठीक है।
जबकि जो मॉर्फिन है वो हाई पोटेंसी ओपियोइड है, मॉर्फिन को तो मोस्टली हम यूज नहीं करते,
ठीक है।
ओपियोइड्स के लो कैटेगरी पोटेंसी वाली जो अदवायात हैं
कोडीन,
डायमॉर्फिन, डायाकोडीन, हाइड्रोकोडीन, ये यूज करते हैं,
ठीक है,
क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन में दे देते हैं मोस्टली हम एनसेड के साथ, मगर इसके भी नुकसान आते हैं, एडिक्शन हो जाती है पेशेंट में।
अच्छा, ये जो ओपिएट्स हैं इनकी वजह से एडिक्शन
हो जाती है,
ठीक है।
ये आम जिस तरह ओटीसी ड्रग्स हैं वो तो बहुत कम है, ये आम पेशेंट की दस्तरस में नहीं है,
ठीक है।
तो मॉर्फिन जैसे है वो तो वैसे ही एक रखना
नशावर,
मगर आपको ये बताना चलूं कि जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि डिजीज टू डिजीज वेरी करता है। अब कैंसर है जिसमें, कैंसर में पेन का इलाज सिर्फ मॉर्फिन है,
बिल्कुल ठीक,
ठीक है। तो मॉर्फिन ही गुड पेन किलर है कैंसर के लिए, तो उसमें देना लाजमी है,
सही है।
बेशक एडिक्शन हो रही है मगर उसका मेन हमारा फोकस है जिंदगी बचाना,
बिल्कुल सही।
तो इस कैंसर में वेरी कर रहा है, बेहतर बेहतर मेडिसिन लेना हमारी मजबूरी है
बिल्कुल,
ठीक है।
जैसे आपने कैंसर की जैसे बात की और जो है जो किडनी के पत्थरी का जो दर्द होता है उसके लिए भी ईरान में जो है वो मॉर्फिन दी जाती है, और मॉर्फिन के बगैर जो है वो वाकई काम नहीं चलाया जा सकता,
नहीं चलाया जा सकता।
खुद हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि बहुत सख्त हो जाता है मरीज के लिए उस दर्द को बर्दाश्त करना और अगर मॉर्फिन का उसको इंजेक्शन ना लगाया जाए। अलबत्त जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उस बहुत शदीद जो है एडिक्शन यानी देती है ये जो ओपिएट्स जितनी भी ये पेन किलर इस लेवल की पेन किलर्स हैं,
बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये मसाइल ज़्यादा क्यों हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं जो जिस आम बंदे की रसाई है और हर मेडिसन हर आम इंसान ले सकता है,
जी सही,
जबकि वो कवानीन के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक मेडिकल स्टोर या रिटेल फार्मेसी है उस पे जो ओटीसी ड्रग्स हैं वही एक पेशेंट को दी जा सकती हैं जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन ना हो,
ठीक है,
ठीक है। उसमें पैरासीटामोल आती है, जबकि हमारी पैरासीटामोल को छोड़ के इवन के एंटीबायोटिक्स तक ही जब जो आप चाहते हैं ले सकते हैं विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, जो कि बहुत बुरी बात है,
सही है।
क्योंकि ये हर इंसान सेल्फ एडिक्ट हो जाता है, सेल्फ असेसमेंट करता है अपनी डिजीज की और खुद ही पेन किलर लेना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है, यानी ये जो मेडिकल स्टोर पे इन दवाइयों का जो रसाई है जो लोगों की, उसको जो है कंट्रोल करना चाहिए।
ठीक,
डॉक्टर साहब गुफ्तगू को आगे चलाएंगे हम, यहाँ पर हमने चलना है रुबाब पास और रुबाब देखते हैं हमें कहाँ पर लेके जा रही है।
और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मुफीद गुफ्तगू आप लोगों की चल रही है। खैर, अब इस गुफ्तगू से थोड़ा बाहर निकलते, थोड़ा ये दवाइयों वाइयों के चक्कर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जाते हैं बाहर स्टूडियो से और एक खूबसूरत सी और ताज़ी ताज़ी हवा खा के अंदर आते हैं। वक्त हुआ एक खूबसूरत सा वीडियो क्लिप देखने का और फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी नाज़रीन, एहसान ख्वाजा अमीरी साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत सा तराना, खूबसूरत से मनाजर के साथ आपने सुना और देखा और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और थोड़ा सा ये दवाइयों वाले चक्कर से जो हमारा माहौल भी थोड़ा सा तब्दील हो गया। खैर, अब फिर से हमें फिर से जाना है खोरम के पास और दोबारा दवाइयों वाली बातों को फिर से शुरू करना है, तो चलते हैं खोरम के पास। जी
बहुत शुक्रिया जी, तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। बहरहाल ठीक है, नहीं बात इनकी सही है कि थोड़ा सा जो है सुबह सवेरे माहौल को जो है ये तब्दील कर देती हैं हमारे लिए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फहीम मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब एक बड़ा दिलचस्प सवाल, और सवाल ये है कि पेन किलर्स की जगह अगर हम कुदरती कोई चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे वो जो है मंजन वगैरह आते हैं दांतों के दर्दों के लिए, की चीज़ें बहरहाल मजाक कर रहा हूँ ये, लेकिन कुछ होती हैं, कहते हैं कि कुछ जड़ी बूटियाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं होम्योपैथी,
कुछ हर्ब कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो मतलब आपके किसी भी नुकसान के बगैर आपको रिलीफ दे सकती हैं दर्द से। मोस्टली मंजन आती हैं, आपने सुना होगा यहाँ पे दांत के दर्द के लिए।
बिल्कुल जी,
तो वो दांत के दर्द को काफी हद तक जिस तरह लौंग है ना, वो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल दांत के लिए, वो उसमें पेन किलर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं उसमें, उसका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है दर्द दांत के लिए।
ठीक है, बजाय इसके कि जो है दवाइयां खाते
दवाई के लिए। बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी आपने निकाली कि मतलब कुदरती चीजों की तरफ जाया जाए तो बहुत बेहतर है। जैसे हम जाएं, हम देखते हैं कि अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में अपनी गजाइत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, अपनी गजा को अच्छी तरीके से जैसे इस्तेमाल करें, कोड लीवर ऑयल, मछली का तेल, जैतून का तेल, ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो पेन किलर प्रॉपर्टीज हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर देती हैं।
अच्छा, यानी खुद इन तेलों का इस्तेमाल जो है हर रोज, ये खुद जो है मदद देता है। अच्छा,
मदद देता है और कुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करता है,
सही है,
पेन के खिलाफ। और एक और चीज भी है कि इंसान में अगर किसी, मैं एडवाइस करूंगा कि अगर कोई भी दर्द हो रही है जिस्म के किसी हिस्से में, तो कुछ पेशेंट से काम लिया जाए बेहतर है, इसकी बजाय कि हम मेडिसिन की तरफ जाएं,
साबुन किया जाए तो बेहतर
है। कुछ अगर हेडेक है तो मतलब आप रेस्ट करें, हाइपरटेंशन है तो रिलैक्स हों, उसके साइड इफेक्ट के तौर पे आपको हेडेक हो सकता है, कोई बॉडी पेन है रिलैक्स रखें अपने बॉडी को,
इसकी बजाय दवाई। लेकिन डॉक्टर साहब मसला है ना, यहाँ पर एक मसला ये है कि दो तरह के लोग हैं हमारे पास, एक जो सब्र करते हैं, वो तो आपने कहा ठीक है सब्र कर लिए, दूसरे लोग हैं जिन्होंने बहुत अरसे से ये आदत अपना ली है कि दर्द हुआ फौरन जो है दवाई खा ली। अच्छा, अब एक सिस्टम होता है हमारे बदन में कि आप अगर एडिक्ट हो गए हैं पेन किलर के, तो उसके बाद आपको अगर हल्का सा भी दर्द होता है तो आपको खानी है दवाई, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप जो है पागल हो जाते हैं। ये थोड़ा सा अगर फिनोमेना हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा अगर समझाएं।
ये ऐसे है ना जी कि जैसे रेगुलर हम किसी चीज को ले रहे हैं तो उसकी एडिक्शन हो जाएगी, आदी हो जाएगी। जैसे एक इंसान डीट हो जाएगा
जी,
तो इस तरह वो जो प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं वो डीट हो जाते हैं,
डीट हो जाते हैं।
वो कहते हैं कि हमने मतलब सिक्रीट होना है, जब तक हम पेन किलर नहीं लेंगे हमने नहीं रोकना।
अच्छा, ये डॉक्टर साहब अभी हम
तो
हम
बॉडी
जी 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 जी
हो जाती है उससे।
ये अभी जो आपने बात की कि डीट हो जाते हैं, अभी शायद हमारे नाज़रीन को लगे कि हम मजाक करें, लेकिन ये हकीकत में यही होता है।
जी बिल्कुल हकीकत है ना, देखें इसको हम मेडिकल की टर्म में बोलते हैं रेजिस्टेंस पैदा होगी, रेजिस्टेंस पैदा हो जाना। मेडिकल रेजिस्टेंस एक टर्म है जिसमें कोई भी चीज़ का कसर से ज़्यादा इस्तेमाल करने से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और उस चीज़ की वो कंसंट्रेशन लेने से के बगैर आपको आराम नहीं आएगा। समटाइम ऐसे होता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक साल के लिए पैरासीटामोल एक रोज़ाना इस्तेमाल किया है रेगुलर, तो ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि ये रेजिस्टेंस इतनी हो जाएगी कि रोज लेने से भी आपको इस्तफादा हासिल नहीं होगा, आप मुफीद नहीं होगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो गया और आपको हो सकता है कि एक और आधी टेबलेट लेनी पड़े या दो टेबलेट रोजाना लेनी पड़े, क्योंकि एक का असर नहीं हो रहा।
یہ ڈاکٹر صاحب بڑی جو ہے اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اور ناظرین یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یہ بڑی جو ہے ایک طرف سے خطرناک اور بڑی اہم بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک عرصے تک ایک دوائی کھا رہے ہیں اس کے بعد شاید وہ دوائی اس مقدار میں آپ کی مدد نہ کر سکے, آپ کو دو برابر یا تین برابر کھانی پڑے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ جتنا صبر کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ جتنا برداشت کر سکتے ہیں برداشت کرنے کی کوشش کریں. چلتے ہیں رباب کے پاس, دیکھتے ہیں رباب. ہاں رباب جو ہے کچھ رباب مزیدار قسم کی چیزیں مجھے ایل سی ڈی پہ تصویریں نظر آ رہی ہیں. جی رباب,
بہت شکریہ خورم. اور ابھی تو خیر مزیدار چیز کی نہیں, میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ کھانے پینے میں بھی ہمارا جو ہے کافی کردار, گہرا کردار ہے ہماری بیماریوں کو دور کرنے کا. خیر ابھی جو میں بات کرنے جا رہی ہوں ہے سونے کے بارے میں, ایسا کیا کیا جائے جس سے آپ اچھی طرح سو سکیں. کہتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو آپ کے جسم میں جو ہارمون لیولز ہیں وہ کچھ اس طرح سے بڑھ جاتے ہیں جو آپ کو نیند کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن ماحول بھی بہت ضروری ہے سونے کے لیے. سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ اپنے تمام الیکٹرانک آئٹمز, موبائل فون, ٹی وی وغیرہ کو ایک گھنٹے پہلے سونے سے پہلے بند کر دیجیے. ٹی وی ہو گیا, الیکٹرانک آئٹم, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, جس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں ایک گھنٹے پہلے اس کو بند کر دیجیے تاکہ وہ ماحول ایسا بن جائے کہ آپ سو سکیں. اس کے علاوہ کہا گیا ہے اپنے کمرے کو جو ہے آپ اس کا ٹیمپریچر اپنے کمرے کو 65 ڈگری تک لے آئیے, جو کہ جتنا آپ کا کمرہ ٹھنڈا رہے گا اتنا آپ کو اچھی نیند آئے گی, آپ کو نیند کی طرف وہ خود کھینچے گا وہ ٹیمپریچر جو ہے کمرے کا. اس کے علاوہ کہا گیا اپنے کمرے کو آپ تھوڑا سا اندھیرا سا کر دیجیے, تھوڑی سی تاریکی اپنے کمرے میں لے آئیے تاکہ وہ نیند کا ماحول اور بھی اچھا بن جائے. اس کے علاوہ ایک بات اور کہی گئی ہے جو بہت ضروری ہے, ہم نہیں کرتے بالکل, کہ ہم یہ ہے کہ اپنے دن بھر کا سٹریس جو ہے اپنے گھر والوں پہ مت نکالیے. اب ایک کتاب لکھیے, ایک جرنل لکھیے, ایک ڈائری لکھیے, اپنا سارا سٹریس جو ہے وہ آپ اس کتاب پہ یا جرنل پہ یا ڈائری پہ نکالیے تاکہ جب آپ سوئیں تو آپ کو کوئی سٹریس نہ ہو, آپ کا سٹریس بالکل خالی ہو گیا ہو. اس کے علاوہ ایک اور جو اہم نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے ایک گرم گلاس, اب دودھ لینا چاہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ لیے, لیکن کیفین کا استعمال بالکل مت کیجیے, چائے کافی نہ لیجیے کیونکہ وہ نیند کو بھگاتی ہے. ایک گرم گلاس آپ دودھ کا پیجیے کیونکہ کہتے ہیں گرم گلاس دودھ کا آپ کے جسم سے سٹریس کو بالکل ہٹا دیتا ہے, آپ کے باڈی کو, آپ کے جسم کو اور آپ کے ذہن کو ریلیکس کرتا ہے. اس کے علاوہ کہا گیا ہے اپنا سونے کا طریقہ جو آپ کا ہے اس کو چینج کیجیے, کروٹ پہ سوئیے, صاف مت سوئیے. صاف سونے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ خراٹے لینا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی سانس کی نالی میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے, تو آپ کروٹ پہ سوئیے, آپ کو نیند اچھی آئے گی. اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے اپنے تکیے کو, جو تکیے کا جو استعمال ہے اس کا خاص خیال رکھیے. جی اپنے گردن پہ اس طرح رہیے کہ گردن بالکل سیدھا ہو اس کے اوپر, اور اگر ضرورت پڑے, آپ کو عادت ہے آپ یعنی اپنے بغل میں تکیہ لے کے سوتے ہیں تو اس کو بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں, یا ٹانگوں کے بیچ میں بھی تکیہ رکھنے سے کہتے ہیں اچھی نیند آتی ہے. اس کے علاوہ اور جو ضروری بات یہ ہے سونے سے پہلے آپ ضرور کہتے ہیں کہ ہلکے نیم گرم پانی سے نہا لیں تو اور اچھی نیند آئے گی, یا تو آپ کو کوئی کتاب یا ناول پسند ہے وہ بھی پڑھ لیجیے. تو یہ آپ کو سب چیزیں ایسی ہیں جو نیند کی طرف لے جاتی ہیں. یہ تو بات ہو گئی کچھ نیند کی, ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر کچھ کھانے پینے کی مزیدار باتیں کرتے. جی ناظرین آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کچھ کھانے پینے کے, کچھ مسالوں کی, اور مسالوں کی شان یعنی زیرے کی, اور میرا فیوریٹ, اور کھانے میں ایک جان سی بھر دیتا ہے یہ زیرہ. خیر بتاتی چلوں کہ اس میں کیا کیا خاصیت ہے. کہتے ہیں زیرے کے اندر آئرن, ڈائٹری فائبر, میگنیزیم, کیلشیم, میگنیز اور پوٹیشیم یعنی بھرا پڑا ہے, تو اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے. کہتے ہیں حاملہ خواتین اور جو مائیں جو دودھ دے رہی ہیں بچوں کو اس کا استعمال کیجیے, ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. کہتے ہیں ہائپر ایسیڈیٹی, آپ کو ایسیڈیٹی کی جتنے بھی مسائل ہوں زیرہ ان کا بہترین علاج ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے جن کو مارننگ سکنس یا متلی وغیرہ کی شکایت ہو وہ بھی زیرے کا استعمال کریں, ان کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگا. آپ کے خون کو صاف اور ستھرا رکھتا ہے زیرہ. اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے جسم کے لیے ایک بہترین انرجی ٹونک ہے زیرہ. اس کا جو زیرے کا جو عرق ہے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے. اس کے علاوہ ایک اور بات کہا گیا ہے آپ کے جگر کو, لیور کو آپ کے یہ صاف ستھرا رکھتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو نظام ہاضمہ ہے اس کو یہ اور بڑھاتا ہے, جن حضرات کو بھوک نہیں لگتی وہ زیرے کا استعمال کریں. اور اس کے علاوہ کہا گیا کڈنی کے جو آپ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں, جو آپ کے گردے کے فنکشنز ہیں, ان کو اور اچھی طرح یہ کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے. ایک اور بات جو یہاں کی گئی ہے, کینسر سے بہترین یعنی بچاؤ کا ذریعہ ہے, مخصوصاً بریسٹ کینسر خواتین کے لیے بہت مفید ثابت ہے. اور آخری بات ایک یہ لکھی گئی تھی اس میں تھا کہ پرانے زمانے میں چند سال پہلے یعنی کافی سال پہلے کیلے کو اور زیرے کو ساتھ پیس کے ان مریضوں کو دیا جاتا تھا جن کو نیند نہیں آتی تھی, تو اس سے ان کو بہترین نیند آتی تھی. اگر آپ کو نیند نہیں آتی زیرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے. یہ تو کچھ بات ہوگی کھانے پینے کی, چلتے ہیں خورم کے پاس. جی خورم
بہت شکریہ رباب, اور کیلے کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کیلے تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے انسان کو نیند لاتا ہے, اب یہ زیرے کا بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دیا, بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب وقت جو ہے ہمارا جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے, یہاں پر سر میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ایک خلاصہ اگر ہمارے ناظرین کے لیے کر دیں کہ کیا کس طرح استعمال کریں دوائیوں کو, استعمال کریں نہ کریں, کیا کیا جائے.
جو میں اس میں یہی آخر میں آپ کہنا چاہوں گا کہ جو پین کلرز ہیں اس سے اس کا استعمال اس صورت میں کیا جائے کہ آپ کو پریسکرپشن میں لکھا ہو,
ٹھیک ہے
ڈاکٹر کی طرف سے, تو بہتر ہے کہ وہ آپ اس کا استعمال نہ کریں ویسے خود گھر اپنی مرضی سے. اگر کرنا ہو تو پیراسیٹامول کا استعمال کر لیں,
ٹھیک ہے,
تو اس سے بہتر اس سے آگے مت جائیں انسیڈ کی طرف. اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جو ضروری ہے بچوں میں, چھوٹے بچوں میں پین کلرز بہت احتیاط سے دینے چاہئیں. جو ننھے مونے بچے ہیں ان میں تو وہ اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں, ٹاکسیسٹی ان کی زیادہ ہو سکتی ہے,
زیادہ ہو سکتی ہے,
تو وہ تو بے شک وہ برداشت بھی نہ کریں.
صحیح ہے,
تو ان میں یہ ہے ہمارے کہ جو آئیڈیل باڈی ویٹ ہے اس کے مطابق جو ڈوز کیلکولیشن کی جاتی ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ انسان کا جو وزن ہے اس کے مطابق اس کی کیلکولیشن کر کے ڈوز نکالی جاتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ فارمیسی سے اس کی ڈوز کیلکولیشن لیں اور پریسکرپشن کے بغیر کبھی استعمال کریں اور اوائڈ کریں تو بہتر ہے.
صحیح, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ جو ہے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہرحال ایک جو بڑا اہم نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ پریسکرپشن, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو دوسرا اہم نقطہ ہے اور المیہ ہے ہمارے ممالک کا, وہ یہ ہے کہ میڈیکل اسٹور میں فارماسسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ پھر بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہے, یا وہ شاید جو ہے آپ کو ایسے ہی آپ کو ایک اینٹی بایوٹک ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے شاید اس کا جو ضمیر ہے وہ تھوڑا سا بولے, کیونکہ اس پر علم ہے کہ اس اینٹی بایوٹک کو ایسے دینے میں اس شخص کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست کریں گے کہ اگلے پروگراموں بھی آپ تشریف لائیں اور اسی لحاظ سے جو ہے مختلف اور دوائیوں کے نقصانات, فوائد اور اس پہ بھی بات کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, چلتے ہیں رباب کے پاس. جی رباب
جی, بہت شکریہ خورما, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور امید کرتے ہیں ہمارے عزیز ناظرین اس بہترین گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. ہائے ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایران کے ایک دستکاری, یعنی جو بول سکتی ہوں مشہور ترین ایران کی چیز, یعنی ایرانی فرش, جگہ جگہ دنیا بھر کے ہر کونے کونے میں معروف یہ فرش. آئیے دیکھتے ہیں اس فرش پہ بنی ایک خوبصورت سی ویڈیو کلپ. جی ناظرین, آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایرانی قالین پہ بنی آپ نے خوبصورت سی ویڈیو کلپ دیکھی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, بہت ہی خوبصورت قالین, بہت ہی خوبصورت. جی
بہت شکریہ رباب, اور جو ہے خوبصورت ویڈیو کلپ دکھانے کا. ہمارے ساتھ مولانا عقیل عباس معروفی صاحب ہمارے فون لائن پہ موجود ہیں. سلام عرض کرتا ہوں مولانا صاحب آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو, اور جو دہ فجر کے یہ 10 دن ہیں اس سلسلے میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
آپ ساری لوگ کو بہت بہت مبارک ہو, دہ فجر بہت ہی زیادہ مبارک ہو انشاءاللہ.
مولانا صاحب ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے خود غرضی, اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟
محترم سامعین کرام السلام علیکم. دنیا میں جو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ دو طرح کے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں, اور ایسے ہی انسان کے اندر پائے جانے والی صفات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ اچھے صفات ہیں, اچھا اخلاق, تواضع, انکساری, ایثار, دوسروں کو اپنے پر مقدم کرنا.
صحیح.
لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ برے صفات بھی پائے جاتے ہیں. انہی بری صفات میں سے اور بری عادات میں سے ایک عادت خود غرضی ہے.
جی.
یعنی جو صرف انسان اپنے کو دیکھتا ہے, اور ایسا انسان دوسروں کی مشکلات کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ایسے انسان کی نگاہ میں. حتیٰ یہ بھی سننے کو آتا ہے بعض لوگوں سے کہ بھئی ہم سے کیا مطلب.
جی.
جبکہ یہ بات انسانیت کے خلاف ہے.
صحیح.
یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر مین بات یہ ہے کہ خود غرضی آتی کہاں سے ہے.
صحیح.
کہا جاتا ہے کہ خود غرضی ایک طرح کی غلامی ہے. یعنی جب انسان خرافات, جہالت, نادانی, تعصب کا اسیر ہوتا ہے تو صرف اپنے کو دیکھتا ہے اور اس کو دوسرے انسان دکھائی نہیں دیتے. لیکن انسان جتنا ہی زیادہ اس کا ضمیر آزاد ہوتا جاتا ہے, یہ ایک طرح کی فکری غلامی ہے کہ انسان فقط اپنے آپ کو دیکھے, انسانیت کے خلاف بات ہے. لیکن جتنا زیادہ اس کا ضمیر آزاد ہوتا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ دوسروں کی فکریں کرنے لگتا ہے.
اچھا,
ہمارے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ जिसके अंदर पांच चीजें में से कोई एक चीज भी ना हो, वो इस लायक नहीं है कि उसके साथ जिंदगी गुजारी जाए। जिसमें से आपने पहली बात तो वफा की कि मौका नहीं है, दूसरी बात कही कि इंसान अच्छे फिक्र का हामिल हो, तीसरी बात आपने फरमाई है कि हयादार इंसान जिसके यहाँ हया पाई जाती हो,
ठीक है।
और यानी ये सारे इंसान वो हैं कि जित होना चाहिए कि इंसान के अंदर वफा, अच्छी फिक्र, हया, हुस्ने खुल्क, और पांचवी बात जो अपने बात से मरबूत है वो ये आपने फरमाई, ऐसा इंसान जिसके यहाँ हुर्रियत ज़मीर ना पाई जाए वो इस काबिल नहीं कि उसके साथ जिंदगी गुजारी जा सके।
अच्छा सही
जी। दूसरों की फिक्र करना या दूसरों के गम में शरीक होना, कमजोरों को निजात दिलाने के बारे में फिक्र करना, लोगों के साथ हमदर्दी करना, उनकी मुश्किलात को अपनी मुश्किलात जानना, ये बातें इस बात की अलामतें कि ये इंसान इंसानियत के आली मकाम पर फायज है। आप अइम्मे अथहार अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये सारी बातें बखूबी देखी जा सकती हैं। हत्ता पड़ोसी का ख्याल करना, सिले रहम करना, हम सफर के हुकूक, ये सारी चीजें बताती हैं कि इंसान को अपने बारे में, इंसान को दूसरों के बारे में भी फिक्र वैसे ही करना चाहिए जैसे अपने बारे में। जैसे कि हमारे छठे इमाम का इरशाद है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, और जो अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए पसंद ना करो। हत्ता आप मौलाए कायनात के बारे में देखिए कि जब कंबर को बाजार में लेके गए और दो कपड़े खरीदे, कीमती कपड़ा खरीदा और एक सस्ता कपड़ा खरीदा, तो कंबर को कीमती वाला कपड़ा दिया। अच्छा। तो जनाब कंबर ने कहा कि आप मिंबर पे जाते हैं, आपको कीमती कपड़ा पहनना चाहिए, मुझे सस्ता दीजिए। तो मौला ने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह की बारगाह में शर्म आती है कि मैं अपने को तुम पर तरजीह दूं और अपने को मुकद्दम करूं तुम पर।
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अकील अब्बास मारूफी साहब, वक्त हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि हमारा कल का जो मौजू होगा, गुलजामस हुसैन साहब हमारे साथ होंगे और इंशाल्लाह जो है मीडिया से मुतालिक जो है हमारी गुफ्तगू चलेगी। नाज़रीन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कल तक लिए मुझे रुबाब को प्रोग्राम सुबह जिंदगी से तेहरान स्टूडियो से इजाज़त दीजिए।
खुदा हाफ़िज़।